नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।